और क्या हाल?
ऑक्यूपेशन क्या है हमारा?
विश्व
कल्याणकारी,
पावन बनाना बाबा के साथ,
ज्ञान दान करना हमारा,
ज्ञान दान देना।
और भी कुछ काम है हमने? हमारे ऑक्यूपेशन क्या है ब्राह्मणों का? पढ़ना और पढ़ाना। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि आप सबका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, यह याद रहता है, वह हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है बाबा?
बाबा के लिए बोलते
विश्व कल्याणकारी हूँ यह याद रहता है, या खाना बनाने वाली हूँ यह याद रहता है? तो बाबा कह रहे हैं अपने सारे कल्प के श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो, लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना, यह स्मृति में रहता है या मर्ज रहता है? क्योंकि जितना समय इमर्ज रहेगा उतना समय खुशी रहेगी, और मर्ज होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को कामकाज में जाने से याद रहता है, या कामकाज के समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूँ, चाहे क्लर्क हो, चाहे बिजनेसमैन, चाहे कुछ भी हो, वो याद रहता है, या यह याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूँ? क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, विश्व का भला करना, विश्व को राह दिखाना, भटको हुओं को मार्ग दिखाना, यह याद रहता है, वह हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ यह याद रहता है, या खाना बनाने वाली हूँ यह याद रहता हूँ? कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो, कुछ भी करो पर अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। जैसे आपके यादगार में भी दिखाया हुआ है, क्या दिखाया है? राजा विराट के यहाँ पांडव अज्ञातवास, तो पांडवों ने गुप्त वेश में क्या की? नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हो, तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा हुआ ना। ऐसे नहीं कि कपड़े धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी यह भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। चाहे कोई भी कर्म करो परंतु स्थिति महान हो, श्रेष्ठ हो। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है, तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शक्ति शांति देगी, यह फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो या समय नहीं मिलता है, अपनी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, निभाना पड़ता है, बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकल जाएंगी। गृहस्थीपन का भान है हद और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़े थोड़े गृहस्थी, थोड़े थोड़े ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है बोझ। इसमें कई चालाकी भी करते, कहेंगे तेरा लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस होता है तो यह निशानी है कि मेरे के बजाय तेरे के बजाय मेरा कहते हैं, तो यह गलती कभी नहीं करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो परंतु अपना असली ऑक्यूपेशन नहीं भूलना है, वो है विश्व कल्याणकारी। तो ये हमारा समान है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। किसका कल्याण करना है हमें?
आत्माएं और प्रकृति।
आत्माओं का कल्याण और प्रकृति का कल्याण, दो चीजों का कल्याण करना। और किसका इसमें अंदर में और क्या क्या? विश्व कल्याण करने से पहले जिसने जितना स्व का कल्याण किया है उतना ही वो विश्व का कल्याण कर सकता है। एक तो ये है, दूसरा है विश्व कल्याण में ही स्व कल्याण समाया हुआ है, ये भी उतना ही सत्य है। दो वाक्य है। तो जिसने जितना स्व का कल्याण किया हो, स्व की सेवा की हो, स्व की स्थिति को ऊंचा उठाया हो, स्व को अज्ञान अंधकार से बाहर निकाला हो, उतना ही वो विश्व का कल्याण कर सकता है। जिसने मन की सेवा की वो मन से सेवा कर सकता है।
दोनों एक दो पर डिपेंडेंट।
अभी किस किस का कल्याण करना है, ये एक चिंतन का विषय है।
विश्व कल्याण करने से अपना भी कल्याण।
हाँ वो तो है, किस किस का कल्याण करना है विश्व में? दुखी आत्माओं का कल्याण करना है, दुखी आत्माओं को सुखी बनाना है, अशांत आत्माओं को शांत बनाना है, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है,
नाउमीदवार
को उम्मीद पैदा करनी है, होपलेस में, होपलेस केस में होप पैदा करनी है, निराश होपलेस नाउमीद हताश हतोत्साहित निरस दिल शिकस्त सब एक ही है, भटकी हुई आत्मा को राह दिखानी है, तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना देना है, और कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली, निर्बल आत्माओं को बलवान, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझानी है, जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, कौन है वो? सब भक्त आत्माएं। भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, मनोरथ पूर्ण करने, भक्त आत्माओं की आशाएं पूर्ण करनी है, भक्त आत्माओं को खुश करना है, प्रसन्न करना है, उनको साक्षात्कार करना है, उनको वरदान देने हैं, महान कार्य करने हैं हमको, भक्तों का कल्याण करना। यहाँ जो पहले थे और यहाँ से फिर चले गए उनको वापस भी तो लाना है, यहाँ जो थे फिर यहाँ से चले गए अब उनको भी आह्वान करना है कि आ जाओ, शायद उनसे माफी भी मांगनी है कि भाई माफ कर दो, आ जाओ, भगवान से नाराज मत हो जाओ, आ जाओ। और किसका कल्याण करना है? हाँ प्रकृति पे आएंगे, पहले आत्माएं, आत्माओं में किस किस का कल्याण करना है? रोगी जो बीमार है, जो रोगी है, रुग्ण है, पेशेंट है, उनको पवित्रता की वाइब्रेशंस देने, हीलिंग, पवित्रता इज द ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर, सबसे ज्यादा हीलिंग किसमें है? प्यूरिटी में। उनको प्यूरिटी के वाइब्रेशन देकर जो रोगी है, रुग्ण है, बीमार है, उनको हील करना है, उनकी पीड़ा कम करना है, उनके दुख कम करना है, शारीरिक व्याधियां जिनको है उनसे थोड़ा पीड़ा तो कम हो जाए, तो रोगियों का कल्याण करना है। और किसका कल्याण करना है? आत्माओं में जो बंधन वाली आत्माएं हैं उनका कल्याण करना है, उनको बंधन मुक्त करना है, और
जिनको दुख दिया
है, जिन जिन आत्माओं को हमने दुख दिया है उनसे माफी मांगकर उनका कल्याण करना है, और बिछड़ी हुई आत्माएं जो अभी तक अज्ञान में है, जो अभी तक पहुंची नहीं है, देवकुल की आत्माएं हैं परंतु जो अभी तक यहाँ नहीं आई है, देवकुल की आत्माएं पर यहाँ पहुंची नहीं है, उन आत्माओं को इमर्ज करना है और उनका आह्वान करना है, हे देवी देवता देवकुल की महान आत्माओं आ जाओ, हे रॉयल कुल की महान आत्माओं आ जाओ, अपने बाप को पहचानो। जो इस घराने की आत्माएं हैं पर अभी तक पहुंची नहीं है उनको इमर्ज करके, ये सब काम अमृत वेले करने हैं। और किसको इमर्ज करना है? विरोधी आत्माएं, जो विरोध करने वाली है, नफरत से भरी हुई है, घृणा से भरी हुई है, नास्तिक है, भगवान विरोधी है, ऐसी आत्माओं को इमर्ज करके उनमें परमात्मा प्रेम को पैदा करना है, ईश्वरीय प्रेम उनके हृदय में पैदा हो जाए। ऐसी कुछ आत्माएं हम भी पर्सनल जानते हैं कि ऐसी दो या तीन आत्माएं हैं जो बिल्कुल नास्तिक है, ऐसी आत्माओं में ईश्वरीय प्रेम के वाइब्रेशन देकर रोज अमृत वेले उनको ईश्वरीय प्रेम के वाइब्रेशन देना और उनमें परमात्मा प्यार पैदा हो जाए। और किसका कल्याण करना है? वेश्याए पतित आत्माए गणिकाए उप जाए। ये जो आत्मा है एकदम पतित आत्मा है संसार की। हाँ अपंग आत्मा है शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से भी मानसिक रोग से जो पीड़ित आत्मा है उनको संसार में जितने पागलखाने हैं उनमें जो जो पागल आत्माएं हैं उनको भी इमर्ज करके उन पागलों को भी सकाश देनी है। उनको पागल कह के पागल नहीं कहो, मानसिक रोग न कहो तो ठीक है, मानसिक बीमारियों से जो ग्रस्त है ऐसी मानसिक बीमारियों से ग्रसित आत्माओं को इमर्ज कर उन्हें भी प्यूरिटी के वाइब्रेशन देने हैं। और किसका कल्याण करना है? हाँ कैदी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जो कैदी आत्माएं होती है उनमें पश्चाताप होता है, दुख होता है, छोटी सी एक गलती कर ली, एक आवेश में आकर एक गलती कर ली, किसी को खून कर दिया, कोई दुष्कर्म कर लिया, कोई पाप कर लिया, अच्छी आत्मा थी परंतु क्रोध आ गया एक समय के लिए, एक क्षण के लिए क्रोध आ गया, उस एक क्षण में पाप हो गया और सब कुछ अभी कैद, उम्र कैद, 10 साल की कैद, कितना पश्चाताप, कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितनी वेदनाएं उनको होती है। उनको पता है कि हमसे गलती हो गई, एक उनकी जो स्थिति होती है बहुत ही, अगर किसी कैदी से हम मिले तो बहुत उनसे अगर बात करो तो पता चलता है कितने वो अंदर से दुखी है, पश्चाताप है उनके अंदर। तो उन आत्माओं को रोज कैदी आत्माओं को इमर्ज करके, जेल के युद्ध के कैदी होते हैं कुछ, एक देश दूसरे, ये दूसरी कैटेगरी है कैदियों की, एक तो वो जिन्होंने पाप किए विकर्म किए वो कैदी, दूसरे वो कैदी होते हैं, एक देश दूसरे देश से जब लड़ाई करता है तो दूसरे देश पर अगर जीत जाता है तो वहां के जो सैनिक है उनको बंदी बनाया जाता है, जंग के कैदी होते हैं, तो उनकी भी बड़ी खराब हालत होती है, उन आत्माओं को भी सकाश देनी, तो कैदियों को सकाश देनी, कैदियों को कल्याण करने। और आतंकवादी, उग्रवादी, माओवादी, ये सबको इमर्ज करना है, क्योंकि ये जो आतंकवादी आत्माएं हैं इनमें परमात्मा प्रेम पैदा करना है। किसका? स्मगलर, अच्छा, चोर, डाकू और स्मगलर, वो तीन अलग कैटेगरी है, तीन तीन कैटेगरी, एक एक तीन तीन का ग्रुप इमर्ज करना है, जैसे बीमार, तीन तीन का अपने सामने तीन तीन ग्रुप, जैसे आतंकवादी, उग्रवादी और माओवादी, इसको इमर्ज करना है। कैदी, हाँ हाँ एक मिनट मिनट, एक तो कैदी में भी जो कैदी है वो, फिर उसके जो परिजन, उसके जो रिश्तेदार है, और वो जो जिस जेल में वहां के जो जेलर उनका भी कैदा करना, क्योंकि वो बड़े सख्त होते हैं तो उनको भी कल्याण करना है। फिर उसके बाद में आतंकवादी, वो तो बोल दिया, राजनीति, तीन सत्ताएं हैं, तीन सत्ताओं को इमर्ज करना है, धर्म सत्ता, राज सत्ता और विज्ञान सत्ता। धर्म सत्ता वालों को इमर्ज करना, क्योंकि इस समय धर्म भी तमो प्रधान है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, धर्म के जो ठेकेदार है वो भी क्या क्या कर्म कर रहे हैं, तो उनको भी सकाश देनी है। फिर राजसत्ता, तो उनको तो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, राजसत्ता को सकाश देना। और तीसरा है विज्ञान सत्ता, जल्दी करो कुछ, तो ये तीन सत्ताओं को इमर्ज करने। और आपने कुछ कहा अभी, हाँ जल, थल और वायु, तीनों, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये तीनों को भी सकाश देनी, ये तीन। और कौन कौन? ड्रग एडिक्ट, हाँ, जो व्यसन, नशे वाले, चाहे दारू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, चरस हो, गांजा हो, ड्रग एडिक्ट हो, क्योंकि ये परवश होती है आत्मा, इंटरनेट एडिक्ट हो, नेट एडिक्ट, मोबाइल एडिक्ट, वो दूसरा, वो थोड़ा लोअर, ये थोड़े हायर टीवी, मोबाइल और इंटरनेट एडिक्ट, ये तीन की कैटेगरी जो इसी में फंसे हुए है, निकल नहीं पाते इससे। हाँ, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, बाल विवाह, बाल श्रम, अभी तो बाल विवाह कम है, कहीं कहीं होगा, तो उनको भी सकाश देनी। एक वो कैटेगरी है, फिर हमने सन्यासियों को तो भूल गया, वो धर्म सत्ता में आ जाता है, फिर भी एक स्पेशल सन्यासियों को भी सकाश दे। अलग अलग प्रकार के सन्यासी होते, सन्यासी और एक उदासी होते। उदासी पता है ना कौन है? उदासी, उदासी एक ग्रुप है जो कि गुरु नानक जी का जो बेटा था चांद, उसने अपना एक सन्यासी वर्ग स्थापन किया, उस वर्ग को कहा जाता है उदासी। चांद जी जो था गुरु नानक का बेटा, उसने जो वर्ग को सन्यासी सांप्रदाय जो चालू किया, उस सांप्रदाय को कहा जाता है उदासी। उदास शब्द का अर्थ है यहाँ पर डिटैच्ड, विरक्त सन्यासी, एकदम एकदम न्यारे, जिसको कुछ से कुछ लेना देना नहीं है। वो हिंदू धर्म के जो पंच देवता है उनको भी मानते हैं और इसको भी मानते हैं, उनके अपने एक वस्त्र होते हैं पहनने के। और सिख धर्म की काफी उन्होंने, मतलब जब भारत में मुगल का शासन था तब मुगलों ने सिखों पर बहुत अत्याचार किए। उस समय जब सिख जब लड़ रहे थे तो सिखों का काम, क्योंकि इनके जो वे वस्त्र थे वो कुछ अलग थे, सिख जैसे नहीं थे, तो उस वजह से सिख धर्म को सपोर्ट इन लोगों ने किया गुप्त तरीके से, क्योंकि उनको नहीं पकड़ा, क्योंकि वो सिख नहीं दिखते थे, दिखाई देने में वो सिख जैसे नहीं दिखते थे। इसके लिए मुगल उनको पकड़ते थे जो सिख है, क्योंकि वो मानते नहीं थे। सिखों पर बहुत अत्याचार किया मुगलों ने, औरंगजेब और वो सब ने। पर उस समय जब ये लोग लड़ाई करते थे खालसा, उस समय गुरुद्वारे में बैठकर जो गुरुद्वारों का जो गुरुवाणी वगैरह करते थे वो ये उदासी लोग थे। तो ये एक सेपरेट कैटेगरी है, बाबा कहते हैं ना मूल्यों में सन्यासी उदासी, तो उदासी अपने आप में एक सांप्रदाय है। तो उन उदासियों का भी कल्याण करना है, शंकराचार्य महामंडलेश्वर उनका भी कल्याण करना है, लामा मौलवी भिक्षुक बौद्ध के भिक्षुक, क्रिश्चियन मॉन्क्स, रोमन कैथोलिक सेंट्स, रोमन कैथोलिक मॉन्क्स, हर धर्म में जो सन्यासी है उनका कल्याण करना है। नागा, नागा कैटेगरी होती है ना, जो निर्वस्त्र रहते हैं, श्वेतांबरा, हीनायना महायाना बौद्ध के, तो हमें बड़े बड़े कार्य करने। ये सब इतनी सारी आत्माएं, उसमें सन्यासी में एक भक्त आत्मा है और संसार की दुखी अशांत आत्मा है, जिनको हमने दुख दिया, जिन्होंने हमको दुख दिया, वो कैटेगरी एक। तीन सत्ताएं, कैदी, रोगी, गरीब, भिखारी, उनका क्या करेंगे? उनको धनवान बना देंगे, स्थूल धन की सूक्ष्म धन दोनों। पिछाड़ी जहां ऐसी वो जो है ना, आजकल तो उनका इतना नहीं है, पहले इसमें उनको थोड़ा नीचे माना जाता था, अभी इतना नहीं है वो। तो हमें विश्व का कल्याण करना है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, हमें इतनी सारी आत्माओं का कल्याण करना है, इतनी सारी आत्माओं में परमात्मा प्रेम उत्पन्न करना है। अच्छा, ब्राह्मणों को भूल गए क्या? ब्राह्मणों का कल्याण हो गया? ब्राह्मणों का भी कल्याण करना है जो पुरुषार्थहीन है, जो पुरुषार्थ में, जैसे तो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है पुरुषार्थ, उनका सब्जेक्ट है खाली योग, उनका किसी किसी का सब्जेक्ट है केवल, नहीं नहीं योग नहीं, सेवा, बस सेवा में ही लगे हुए दिन रात, योग और ज्ञान से ज्यादा परे ज्ञान से परे चले गए। तो ऐसी आत्मा, हाँ जी बैलेंस, ऐसी आत्मा मतलब जो ब्राह्मण है उनका भी कल्याण करना। आज की मूल्य में बाबा ने कहा ना, दृष्टांत बनना है तुम्हें, दृष्टांत अर्थात उदाहरण, सैंपल बनना है, एक आदर्श बनना है विश्व के लिए, एग्जाम्पल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो त्रिकालदर्शी होना है, साक्षी दृष्टा, और दृष्टांत बनना है विश्व की आत्माओं के लिए। तो दृष्टांत कब बनेंगे? पहले स्व का कल्याण करेंगे तभी तो दृष्टांत बनेंगे, तभी विश्व का कल्याण करेंगे। और हमें उनका कल्याण करना है जो अपना कल्याण करना नहीं चाहते, विश्व की जो आत्माएं हैं वो अपना कल्याण नहीं करना चाहते, हमें उनका कल्याण करना है। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसको हम उठाना चाहते तो उसकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? सोने दो, और बस क्रोध क्रोध करेगा, मारेगा। तो विश्व सोया हुआ है और हमको उस विश्व को उठाना है, तो सबसे पहली उसकी रिएक्शन होगी क्रोध, उठाया क्यों?
बोले और सो ले।
तो हमें विश्व कल्याण करना है, फर्स्ट स्टेप है, हमें स्व का कल्याण करना है, फिर विश्व कल्याण करना है। जितना जिसने स्व का कल्याण किया उतना वो विश्व कल्याण कर सकता है, और विश्व कल्याण में ही स्व सेवा समाई हुई है। और सबसे ज्यादा विश्व कल्याण कौन कर सकता है? जिसने स्व का कल्याण, अभी स्व का कल्याण अर्थात गीता में एक महावाक्य है, जिसके मन में संकल्पों का अभाव है वो विश्व की सबसे अधिक सेवा कर सकता है। जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, कम से कम संकल्प है, श्रेष्ठतम संकल्प है, महानतम संकल्प है, उसके द्वारा जो विश्व की सेवा होती है वो महानतम सेवा होती है, सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है। जिसके मन में ही हलचल है वो विश्व का कल्याण क्या कर सकता है। जिसके वह योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। तो हमारा सम्मान है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अभी दूसरा टॉपिक है प्रकृति का कल्याण। अभी ये तो आत्माएं थी खाली, इसमें भी बहुत बाकी है। दूसरा है प्रकृति का कल्याण करना है। क्या करोगे प्रकृति का कल्याण? प्रकृति में है 5 तत्व, तो इन तत्वों का कल्याण करना है। अग्नि, अग्नि सारे विश्व को पावन करती है, हमें उस अग्नि का कल्याण करना है। जिसने अग्नि का कल्याण किया, जिसने अग्नि को सकाश दी है, विनाश काल में अग्नि उसे बचाएगी, अग्नि उसे हानि नहीं पहुंचाएगी। जिसने जल का कल्याण किया है, अभी जल का कल्याण कैसे करोगे? 5 महाद्वीप है, उन 5 महाद्वीपों के ऊपर अमृत वेला जाना है। महासागर है, 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। सबसे पहले हिंद महासागर जाना है, भारत और अफ्रीका के बीच में जो है, उसके ऊपर जाकर उस हिंद महासागर को सकाश देना है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, जो अमेरिका और अफ्रीका के बीच है, वो है अटलांटिक महासागर। फिर इधर से जो चालू होता है सबसे बड़ा, वो है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। जो उधर से चालू होता है सीधा भारत तक, इधर वो है प्रशांत महासागर, उसको सकाश देना। उसके बाद है, उसको कहा जाता है पैसिफिक ओशन। हम ओशन की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सी की बात नहीं कर रहे, सागर। उसके ऊपर है सबसे, फिर है आर्कटिक महासागर, सबसे ऊपर धरती के ऊपर, वहां कोई नहीं रहता। नीचे है दक्षिण महासागर, सदर्न ओशन। तो ये 5 महासागर है, इन जल को भी सकाश देनी है। जल को जिसने सकाश दी होगी उसको जल
मिलता रहेगा,
जल, अच्छा पानी मिलता रहेगा, और पानी उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। बाढ़ आएगी पर हम डूबेंगे नहीं, अतिवृष्टि होगी पर हमें कुछ नहीं होगा, संसार में पीने को पानी रहेगा नहीं होगा पर हमें पानी मिलता रहेगा। तो जल को सकाश, फिर है अग्नि, जल, वायु। वायु में विकार है, हम कौन है? पवन पुत्र है। तो हमको वायु को शुद्ध करना है, वायुमंडल को शुद्ध करना है। धरती के ऊपर जो वायुमंडल है अलग अलग अलग, उन सब वायुमंडल में जो विकार के वातावरण है उन सबको परिष्कार करना है, उनका परिष्कृत करना है, शुद्ध करना है, शुद्धिकरण करना है उनका। तो ये एक काम करना है वायु। जिन्होंने वायु को सकाश दी होगी, तूफान आंधी रुक जाएगा, थम जाएगा। आंधी तूफान आए तो कर उनका खैर मकदम, इतने ना। तो तूफान हमें कुछ नहीं कर सकेगा, साइक्लोन ये जो भी आएगा हम सुरक्षित रहेंगे। चौथा आकाश, जिन्होंने आकाश को, आकाश में किस किस को, अभी आकाश में भी सकाश के लिए है कैटेगरीज है। आकाश में क्या क्या है? सूर्य को सकाश देनी है, सबसे पहला सकाश पवित्रता की किरणें सूर्य को देनी है। अभी इससे डबल काम हो जाएंगे, हम सूर्य को सकाश देंगे और सूर्य वो अपने किरणों के साथ सारे विश्व को सकाश फैलेगी, हमारी पवित्रता सूर्य के द्वारा। चंद्रमा को सकाश, तारों को, नक्षत्रों को सकाश, फिर उसके बाद है ग्रहों को सकाश, भिन्न भिन्न 9 ग्रह है, उन 9 ग्रहों को सकाश। ज्योतिष की शास्त्र के अनुसार इन ग्रहों का बड़ा महत्व है, दिशा और दशा ग्रहों की, तो इन सारे ग्रहों को सकाश। तो ये सब अमृत वेला, ये सारे फटाफट ये कार्य कर देना, इतनी आदत पड़ जाए कि 10 मिनट में ये सब कुछ हो जाए। 10 मिनट में अगर रोज रोज करते रहेंगे ना तो ये सारा याद रहेगा। अरे रुको, बोल देना सब पहले लाइट वालों को, अरे रुको हमारा अभी ग्रह ग्रह बाकी है अभी। जैसे आत्मा परम धाम से नीचे आती है, ये सोचो मैं फरिश्ता आसमान में खड़ा हूँ, मुझसे सूरज चांद सितारों को सकाश जा रही है, सारे ग्रहों को सकाश जा रही है, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आते ही वायुमंडल में सकाश जा रही है, नीचे उतरा धरती पर खड़ा हूँ, मेरे पैरों से संपूर्ण धरती को पवित्रता की सकाश जा रही, फिर जा रहा फिर यूरोप के ऊपर गया, एक अफ्रीका के ऊपर, दो एशिया के ऊपर, तीन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, चार नीचे अंटार्कटिका ऊपर, पांच नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सात महाद्वीप हो गए। उसके बाद में हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक और दक्षिण, पांच महासागर हो गए। उसके बाद में सीधा चले जाओ दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, वेश्याएं, रोगी आत्माएं, तीन सत्ता है। और फिर आ जाओ नीचे शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, म्यूजियम, हॉस्पिटल, पीस पार्क, यहाँ की आत्माओं को प्यूरिटी की सकाश। फिर सारे सेंटर्स को इमर्ज करो, अपने असंख्य रूप धारण करो। क्या करो? अपने असंख्य रूप धारण करो। कौन से? फरिश्ता वाले। जैसे श्री राम जब आए थे और सब अयोध्यावासियों को लगा कि मैं पहले राम से मिलूं, तो प्रभु धरि विविध शरीरा, ऐसे दिखाते हैं उसने, भगवान ने अपने अनंत शरीर प्रकट किए। जैसे कृष्ण ने रासलीला में अनंत शरीर प्रकट किए, अपने अनंत रूप प्रकट करे, हर गोपी को लग रहा है कि वो मेरे साथ है, वैसे मैं फरिश्ता अपने अनंत फरिश्ता रूप प्रकट कर रहा हूं। और एक एक सेंटर के ऊपर गया, सेंटर की जो संदली है वहां पर मैं बैठा हूं, और सामने बहने और बहनों के पीछे भाई बहने, सेंटर की बहने सामने और उनके पीछे भाई बहने, और दो संकल्प, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इस सेंटर के जो भी विघ्न है वो समाप्त। एक दूसरा, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, जो सेंटर की बहने हैं, चलाने वाली प्रभारी और जो भी समर्पित बहने, उन सबको प्यूरिटी की सकाश, और उनके पीछे खड़े सभी भाई बहने, बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी है उनको भी सकाश। और इस तरह से, अच्छा अगर आपके पास और भी टाइम बचा है ये सब करने के बाद अमृत वेला, तो नहीं फिर उसके बाद में चले जाओ भारत के ऊपर, फिर चले जाओ राजस्थान के ऊपर, राजस्थान हो गया, फिर चले जाओ यूपी के ऊपर, फिर एमपी के ऊपर, फिर कश्मीर के ऊपर, फिर बॉर्डर पे भी चले जाओ, थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर भी चले जाओ, एक एक देश। अगर ये करने के बाद में फिर भी समय बाकी है तो फिर आ जाओ माउंट के ऊपर, सबसे पहले आ जाओ शांतिवन के ऊपर, शांतिवन की सर्व आत्माएं हैं, उनको प्यूरिटी की सकाश। फिर चले जाओ शांतिवन से लेके तो संगम भवन के बीच में कॉलोनी निवासी है बहुत सारे, उन सब आत्माओं को सकाश। फिर चले जाओ संगम भवन पर, फिर चले जाओ रेलवे स्टेशन पर, फिर चले जाओ ट्रॉमा हॉस्पिटल पर, फिर चले जाओ तपोवन, फिर चले जाओ पीएम पार्क, फिर चले जाओ शिवमणि, फिर वहां पे नर्सिंग की कन्याएं है, एक नर्सिंग कॉलेज है, फिर चले जाओ वहां, फिर आ जाओ पांडव भवन, फिर चले जाओ ज्ञान सरोवर, फिर चले जाओ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल P1, P2 और जनरल वार्ड, रोगी आत्माएं हैं वहां पर, उन सबको उन सबको सकाश। फिर आईसीयू में आत्माओं को सकाश, तीन लोगों को सकाश देना है। जब रोगियों को सकाश देते हो, सबसे पहले तो पेशेंट, पेशेंट को सकाश संसार के, फिर वो पेशेंट को देखने वाले चिकित्सक डॉक्टर को सकाश, फिर वो पेशेंट के जो रिलेटिव है उनको सकाश। ये तीन कैटेगरी क्रिएट करनी है, पेशेंट, डॉक्टर एंड रिलेटिव्स, इन तीनों को सकाश की आवश्यकता है। फिर वहां से निकलो पीस पार्क, फिर वहां से निकलो म्यूजियम, फिर चले जाओ टोल नाका, टोल नाका पे एक लकीर खींचो पवित्रता की, कि इस आज सारे दिन भर इसके अंदर जो भी आएगा बस प्यूरिटी बाबा को पहचान लेगा। फिर उन आत्माओं को इमर्ज करना, आज आबू में जो भी सेनानी पर्यटक आने वाले हैं, चाहे यहां आने वाले, चाहे वहां आने वाले, या कहीं पर भी आने वाले, उन सबको आने से पहले ही पवित्रता की किरणें दे देनी। तो ये छोटा सा काम करना है बस माता जी तो हम है विश्व कल्याणकारी, तो हम थे तत्व के ऊपर, तो ये पांच तत्वों को सकाश देनी। और भी कोई तत्व बाकी? पांचवा हो गया ना,
धरती।
हाँ, तो धरती को सकाश देनी है, पवित्रता से भरनी है, ताकि भूकंप, फिर हो गया है, फिर उसके बाद में झाड़, झाड़ियां, फल फूल वृक्ष, उसके बाद में जीव जंतु, प्राणी, हिंसक प्राणी, उनको भी सकाश। ये काम पांच मिनट में कर देना है सुबह सुबह। सर्व आत्माओं का सकाश देनी, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।